वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिने गुरवे गौरचंद्राय राधिका तदाल्यै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवते नैष्टिके कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ संस्थापिक आचार्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति अभयचरणार भक्ति वेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी की कृपा से श्री रुक्मणी श्री श्री राधा राधिका रमन श्री कृष्ण बलराम जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा इस्कान पंजाबी बाग में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंद के 22वें अध्याय में बलि महाराज की शरणागति का विषय आज के श्रवण और वर्णन का विषय है। सो पहला एक बात दिमाग में बिठा लें कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये एक महाजन की शिक्षा है। बलि महाराज 12 महाजनों में से एक महाजन है तो इसको महाजन की शिक्षा करके श्रवण करना चाहिए। यह है महाजन की शिक्षा। और दूसरा बलि महाराज नवदा भक्ति में आत्मनिवेदन के आचार्य हैं जो सर्व सब कुछ भगवान को समर्पण करना आत्म मतलब स्वयं का निवेदन मन करना मतलब निवेदन करना मतलब अर्पण करना जो अपने आप को अर्पण कर दे अपने आप में असल में होता है अहंकार उसका अर्पण जो कर दे और जो सर्वस्व अपना अर्पण करता है, ऐसा पर्यावाची शब्द हमारी भाषा में हो गया है कि बलिदान शब्द बलि महाराज से आया है। हम आम भाषा में बलिदान बोलते हैं, भाई इसने बलिदान कर दिया, तो बलि महाराज सामान्य परिवाच्य भाषा में आ गया, भाई इसने बड़ा बलिदान दे दिया। तो बलिदान मतलब जैसे बलि ने दान दिया ऐसे दान दिया, तो ये शब्द हमारी भाषा में आ गया है बलि महाराज के उदाहरण से। तो अब दर्शन क्या है? दर्शन ये है कि, और सिद्धांत क्या है आठवें स्कंद का? आठवें स्कंद में विशेष रूप से मनवंत्रों का वर्णन है, और मनवंत्र भागवत के 10 विषयों में से एक विषय है मनवंत्र, और मनवंत्र के लिए दूसरा शब्द भागवत में लिखा है सद्वासना। मनवंत्र अथ सद्वासना, सद्वासना या सद्धर्म, मनवंत्र अथ सद्धर्म। सद्धर्म मतलब मनु कोई विशेष धर्म जिसके द्वारा भगवान की प्राप्ति हो, वो सिद्धांत सिखाते हैं। तो इसमें एक मुख्य सिद्धांत बलि महाराज के चरित्र में ये है कि जीवन में वचन करना है तो वचन को निश्चित रूप से पालना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, ये सधर्म है। जैसे रामायण पूरी के अंदर भाई राम जी के वचन पालने को बहुत मुख्य कहा जाता है, भाई वचन अपना माता पिता के आज्ञा का पालन किया, वचन का पालन किया। तो बलि महाराज अपने वचन पालन करने का, उसमें बाधा डालने के लिए गुरु जी इनकार करे या भगवान भी छल करने के लिए आए, फिर भी अपने वचन से बिल्कुल नहीं हिलना चाहिए। तो ये सधर्म, मुख्य सधर्म जो यहां है वो है वचन पालना। मनवंतर अर्थ सधर्म, और सधर्म पालन करने से हृदय के अंदर जो कर्म की वासनाएं हैं वो नाश हो जाती। सधर्म, सद्धर्म इसका मतलब सद्धर्म, सद्धर्म मतलब जो सत्पुरुष धर्म सिखाते हैं, तो सारे मनु सत्पुरुष हैं, तो वो जो धर्म सिखाते हैं उसको मनवंत्र का धर्म कहा जाता है। अब जो दर्शन है वो दर्शन ये है कि बलि महाराज के घर यज्ञशाला में जो यज्ञ हो रहा था भृगु कच्छ में, वो भृगु कच्छ जो आज बरूच है राजस्थान गुजरात में, नर्मदा का तटीय बरूच है, यज्ञ ये यहां हो रहा था बलि महाराज जिस यज्ञ में गए थे। बलि महाराज का यज्ञ हो रहा था भृगु कच्छ में जो नर्मदा के किनारे बरूच है, और उस यज्ञ में आदित्य नाम अहम विष्णु, जो भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं वो आदित्यों में विष्णु में ये वामन देव है, तो वामन देव वहां पहुंचे हैं, और वामन देव और उनका जो आपस में वार्तालाप हुआ है ये तो आप श्रवण करके आए हैं। पहले प्रशंसा करनी चाहिए, किसी से दान मांगना है ये बलि महाराज ने, ये वामन देव ने सिखाया, किसी से कुछ मांगना है तो उसकी प्रशंसा पहले जरूर करनी चाहिए, बगैर प्रशंसा के जेब उसका खाली नहीं, ढीला होता नहीं है। तो उसके पूरे पूर्वजों की प्रशंसा की है भगवान ने बैठ के, ये कितने बड़े महान आपके दादा हुए प्रहलाद, आपके पिता विरोचन, अपना जीवन ब्राह्मणों को, अपनी आयु दे दी ब्राह्मणों को, तो ऐसा प्रशंसा करने का विधान भगवान ने स्थापित किया है। तो कहीं भी कोई दान लेने जाना है तो कम से कम उसके जेन्यन उसकी जो है अच्छाई का वर्णन करना चाहिए, ये सीधा सिद्धांत है। और उसके बाद बलि महाराज ने जब मांगने के लिए, बलि महाराज ने कहा कुछ मांग लीजिए, तब तो तीन कदम अपने पांव से मेरे अपने पांव से नाप के तीन कदम जमीन चाहिए, तब तो बलि महाराज को आश्चर्य लगा कि मांगना तो आता नहीं है, बातें तो बड़ी विद्वान जैसी करते हैं। तब जो शब्द कहे हैं वामन देव ने वो भी शिक्षा के शब्द हैं कि गया जैसे और पृथु जैसे महाराज इतनी सारी साम्राज्य था तभी भी संतुष्टि नहीं हुई, तो फिर ब्राह्मण को तो जरूरत से ज्यादा कभी नहीं मांगना चाहिए, ये जो शिक्षा है ब्राह्मण की मांगने की आवश्यकता से अधिक कभी नहीं मांगना चाहिए, बस मेरे को इतना ही चाहिए। और जब संकल्प हो गया, उस बीच में गुरु ने मना किया, ये तो कथा हो चुकी, तो दो तब भगवान वामन से त्रिवर कर्म हो गए। वामन का मतलब छोटा, बोना, और त्रिवरम का त्रिवीर कर्म का मतलब जिसके जिसके ऐसे उनके कर्म है जो अद्भुत कर्मणा, जिसके दो पांव के अंदर उन्होंने एक पांव में तो ये पूरा भूमंडल नाप लिया, दूसरे पांव में सत्यलोक से ऊपर सीधे पांव का अंगूठा गया, और उसने जो आखिरी भौतिक जगत का पर्दा है उसका छेदन किया, और जो ब्रज नदी का जल है उसने उस अंगूठे का धोन किया, वो अंगूठा धोया, वहां से पानी नीचे गिरा तो ये भगवान विष्णु के अंगूठे को धोया तो वो जल नीचे गिरा तो वो विष्णुपदी, विष्णु का चरण धोने वाली गंगा हो गई। यहां ये बताने में अच्छा लगता है कि वो गंगा पहले चरण धोया, फिर ब्रह्मा जी के करमंडल में गिरी, फिर द्रुलोक में गई, फिर स्वर्गलोक में आई, फिर धरती पे शंकर की जटाओं में आई। लेकिन बलि महाराज कितना भाग्यशाली है कि उसी वामन देव का चरण अपने हाथ से धोया है, न तो ब्रह्मा के करमंडल में गया, न तो शंकर की जटा में गया, उसी जल को अपने सर के ऊपर लगाया और पिया है। कितना भाग्यशाली बलि है, इसकी बलि की भाग्यशालीता को देखना चाहिए कि जो गंगा पूरे विश्व को पवित्र करती है वो गंगा उसी चरणों को अपने हाथ से बलि महाराज ने धोया है। तो ये भाग्यशालीता बलि महाराज की जो है ये अद्वितीय है, ऐसा सबको सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। उसके बाद दूसरे पग में जब ये स्वर्ग आदि लोग सब नाप लिए तो कहा कि अब बताओ तीसरा पांव कहां रखूं। बड़े दानी बन रहे थे और उसको अपना वचन न पूरा करने के कारण वरुण पांच में बांध दिया। अब बलि महाराज बंधे हुए हैं और बंधे हुए बलि महाराज ये प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब ये दर्शन ऐसा है कि बलि महाराज वरुण पास में बंधे हुए हैं, वामन देव सामने उसको ताड़ना कर रहे हैं कि तो बड़े बड़े दानी हो रहे थे, अब दो ना तीसरा पांव कहां रखूं। और उस वक्त दूसरे श्लोक से लेकर ग्यारहवें श्लोक तक ये दस श्लोकों में महाजन बलि महाराज की शिक्षाएं हैं। इसको ऐसे इस दृष्टि से देखेंगे तो बारह महाजनों में एक महाजन है और उसकी शिक्षा है। तो आइए उस शिक्षा का आज चौथवां श्लोक पढ़ते हैं। और उस श्लोक में बलि महाराज भगवान के द्वारा दिए गए दंड को आशीर्वाद मानते हैं। तो इसको बलि महाराज की शिक्षा मतलब ये महाजन ये न गतस पंथ के अनुसार हर भक्त को ऐसे इसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये शिक्षा हम सब के लिए है, ऐसा नहीं है कि बलि महाराज कह रहे हैं और वामन देव सुन रहे हैं, लेकिन ये हम सब की शिक्षा है। तो आइए इस श्लोक का पाठ करें। पुंशाम शलाघ्यतमं मन्ये दंडम अर्थम दंडम अहरतम अर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृद चादिशन्ति पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अहरतम अर्पितम यम न माता पिता भ्राता सुहृदश्च आदिशन्ति पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अहरतम अर्पितम यन्न माता पिता भ्राता सुहृदश्च आदिशन्ति। पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दंडम अहरतम अर्पितम
यम न माता पिता भ्राता सोहृदश्चादिशन्ति पुंसं श्लाघकं मन्ये दण्डम् अर्हतमार्पितम् यं न माता भ्राता सोहृदश्चादिशन्ति पुंसं श्लाघ्यात्मं मन्ये दण्डमर्हतम् अर्पितम् यं न पिता भ्राता सोऽर्हश्चादिशन्ति
माताजि
पुञ्जां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डम् अर्हतात्मकम् यन्न माता पिता भ्राता सोऽर्हश्चादिशन्ति पुंसं श्लाघितं मन्ये दण्डम् अर्हतमार्पितम् यं न माता पिता भ्राता पुंसां श्लाघितमं मन्ये सोऽर्हश्चादिशन्ति पुंसां श्लाघ्यतमं मन्ये दण्डमर्हतमार्पितम् सोऽर्हश्चादिशन्ति।
तो इस श्लोक में पहले मन्ये शब्द को अपने दिमाग में बिठाइए, मैं मानता हूं। क्या है, बहुत से लोग जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, ये परेशानी है। जानते बहुत है लेकिन मानते कम है। सबको मालूम है हरे कृष्णा जपना है लेकिन जपते नहीं है। तो मन्यते का मतलब मैं मानता हूं। जब कोई मानता है ना तो उसको कहते हैं उसने मत बना लिया है, उसको मति बोलते हैं। मान्यता वाला मतलब जिसने मति बना लिए, जिस बुद्धि से किसी चीज को स्वीकार कर ले। तो ये पहला शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं मानता हूं। क्या मानते हैं आप? शलाघ्यतमम, शलाघ्यतमम, शलाघ्यत, शलाघ्यतम। अब तम क्या है? तम किसको बोलते हैं? अंधकार को, हा? तम, और जो उससे ऊपर है वो उत्तम। शलाघ्यतम मतलब इतने महान व्यक्ति जिसके ऊपर अंधकार का कभी प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। श्री प्रभुपाद ने शब्द अर्थ में लिखा है द मोस्ट एक्साल्टेड। श्लाघ्य, श्लाघ्य भाई अंधकार किस चीज का होता है? प्रकृति के तीन गुणों का, जो उससे परे है। कौन उससे परे होता है? भगवान। तो ये किसको संबोधन, किसको कर रहे हैं? भगवान को। तो शलाघ्यतम जो व्यक्ति, पुंसाम का अर्थ तो सबको मालूम है, पुंसाम का मतलब कोई भी व्यक्ति। शलाघ्यतम जो तम से ऊपर महान है, जिसके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, जिसके ऊपर तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता, वो अगर दंड देता है, दंडम, उसका एक दूसरा विशेषण क्या है? वो दंड देता है, वो क्या है? अहरतम। अहरतम का किसको, अहरत किसको, अहरणम किसको कहते? पूजनीय। अहरणम का मतलब पूजनीय, जो पूजनीय है। जैसे अहरतम, अहरतम का मतलब भगवान की पूजा करना, जो पूजनीय है। श्री श्री राधा राधिका रमन की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की, दाई गौर प्रेमानंदे श्री प्रभुपाद की। सो अब क्या शब्द हो गया? अहरतम। ये शब्द को जो पूजन्य है, अब ये शब्द भगवद गीता में ढूंढो, पूजा रहा अरित, कौन सा भीषम द्रोण के लिए, हा क्या है, हा पूजा रहा अरिसूदन, जो पूजा के योग्य है। और अर्पितम का मतलब, देखो ये बहुत बड़ी बात है, अर्पितम, दूसरा कोई दंड देता है लेकिन भगवान देता है तो उसको कहते हैं अर्पितम। उसने अगर पूजनीय व्यक्ति किसी को दंड देता है तो इसका अर्थ ये हुआ, जो प्रकृति के गुणों से परे है, माया से परे है, वो किसी को दंड देता है तो शत्रुता की वजह से तो नहीं देगा ना, उसमें कोई शत्रुता तो नहीं है ना, वो तो हित के लिए है। अब ये दंड की परिभाषा है, ऐसी दंड की दूसरी परिभाषा आपके दिमाग में ऐसे जल्दी आती है, अभी आने वाला है उत्सव, दंड महोत्सव, कौन सा, तदीचीरा फेस्टिवल, ये हुआ दंड, ये दंड उत्सव है ना, नित्यानंद का, रघुनाथ का दंड, ये कैसा दंड है, उसका नाम दंड है, ये दंड इस लाइन में उस दंड को बिठा दीजिए, दंडम अहरत अर्पितम। अगर नित्यानंद महाजन जो श्लाघ्यतम है वो अगर रघुनाथ को दंड देता है तो चैतन्य महाप्रभु के चरण मिलते, ये बहुत बड़ी बात है कि नहीं, तो ये लाइन में वो उदाहरण भी ठीक सोलाना बैठता है। और यहां बलि महाराज कह रहे हैं कि आपने जो मुझे दंड ये दिया है, बलि महाराज को क्या मिला, भगवान वामन देव दरवाजे के ऊपर मिले, भाई जान हमको तो मंदिर में आना पड़ता है, वो घर के अंदर भगवान को दर्शन कर लेता है, तो कितना बड़ा उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो ये दंड नहीं है असल में कहा जाए तो मैं मानता हूं कि ऐसे महान व्यक्ति जो पूजा के योग्य है अगर किसी को दंड देता है तो वो उसके हित के लिए होता है, उसके भलाई के लिए होता है। अब दूसरे उदाहरण देते हैं, वो भी भलाई के लिए देते हैं लेकिन वो इतना हित नहीं कर सकते, उनका नाम क्या है, जैसे यम, न का मतलब उसके दंड में इतना ज्यादा महत्व नहीं होता है, किसका, माता पिता भ्राता सुहृद, माता भी दंड देती है कभी, पिता भी देता है, कोई भला चाहने वाला भी दे सकता है। और शब्द आदिशात, च आदिशात, आदिशात मतलब आदिशांति, आदेश करते हैं, आदिशांति आदेश करते हैं, तो वो इतना हित नहीं करते हैं जितना आपके द्वारा ये दिया हुआ दंड हमारा हित करेगा। तो इसमें महाजन बलि महाराज का एक बहुत बड़ी शिक्षा है कि परीक्षाओं से सबको इस संसार में गुजरना पड़ता है, और संकट भी सबके ऊपर आते हैं, उस स्थिति में ऐसी भावना को मान्यता ऐसी रखे कि भगवान ने हमारे हित के लिए किया होगा, वो हमारा सदा हित करता है, जितना इस संसार के माता पिता नहीं हित करते हैं उससे ज्यादा भगवान, मतलब माता पिता सब जगह आपके साथ होते हैं क्या, भाई बंधु होते हैं क्या, नहीं, भगवान सदा आपके साथ है कि नहीं है, तो क्या वो आपके हृदय में बैठा है, कह रहा हूं मैं आपका सुहृद हूं, तो क्या वो नहीं जानता है कि आपको क्या तकलीफ है, वो जानता है ना। तो ये असल में जो साक्षात्कार कर लेते हैं भगवान, वो ऐसे अपने आप को, इसका एक अर्थ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि भगवान अपने आप करता रहेगा, अर्जुन की तरह बाण हमको चलाना चाहिए और भरोसा भगवान के ऊपर रखना चाहिए, ऐसा नहीं हम सो जाए कि भगवान करता रहेगा, दोनों काम साथ में कर ले। सिद्धांत ये है, भक्त को कितना परिश्रम करना चाहिए, जितना यशोदा मैया ने भगवान को बांधने का किया, और तब भगवान की कृपा का के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए कि आएगी आएगी आएगी, जरूर आएगी, हाँ केशव केशव कूकी और न कूकी असार, कभी तो भिनक पड़ेगी, कभी तो भगवान के कान पे पड़ेगा कि हमारे लिए इंतजार कर रहा है। तो ये इंतजार का श्लोक है असल में। अब इस श्लोक का अर्थ पढ़ते हैं, कहाँ है इसमें निकालो भैया। अब शब्दार्थ, ये शब्दार्थ समझ में आया। हम मानते हैं कि भगवान आप जैसे महान जो पूजा के योग्य है, अगर किसी को दंड देते हैं वो हमारे हित के लिए होता है, ऐसा तो हमारे माता पिता भाई बंधु भी नहीं करते हैं। तो आइए इस श्लोक का अनुवाद पढ़ते हैं। यद्यपि कभी कभी किसी व्यक्ति के पिता, माता, भाई या मित्र उसके हितेशी होने के कारण उसे दंडित कर सकते हैं। ये पहली नीचे वाली लाइन का अर्थ है। कभी कभी दंड दे सकते हैं, इनको दंड देने का अधिकार है, किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को दंडित नहीं करते। किंतु वे कभी भी अपने आश्रित को दंडित नहीं करते, किंतु आप परम पूज्य भगवान हैं, अतएव अपने आपने मुझे जो दंड दिया है उसे मैं अत्यंत महत्वपूर्ण समझता हूं। बलि महाराज कहते हैं, वहां शब्द क्या लिखा है, ताड़ना करना। एक दंड देना और एक ताड़ना करने में दो अर्थ। जब यशोदा मैया लाठी दिखा रही थी तो असल में कोई दंड नहीं देना चाह रही थी, थोड़ा सा ताड़ना, ताड़ना है। और उसके लिए लिखा है कि अर्भक वत्सला, वो तो पराए बच्चों से ही प्रेम करने वाली थी, अपने बच्चों को कैसे डांटेगी, अपने बच्चे को थोड़ी लाठी मारेगी। वहां जो शब्द लिखा है अर्भक वत्सला, इसका मतलब जब अपना बच्चा हुआ नहीं था तो पूरे ब्रज के बच्चों से प्रेम करने वाली यशोदा कैसे कठोर हो सकती है और दंड दे सकती है। दंड नहीं, वो थोड़ी ताड़ना दिखाने के लिए बाहर से ताड़ना कर रही थी, हृदय में तो बहुत स्नेह था। तो माता पिता ऐसा दंड नहीं देते, लेकिन आपने जो दंड दिया है, मुझे वर्ण पाश में बांध दिया है, ये आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। अब दूसरा कोई उदाहरण जल्दी आपके दिमाग में आए कि जिसमें दंड देने को अच्छा माना हो। एक तो उदाहरण आ गया, कौन सा, नित्यानंद रघुनाथ। दूसरा जल्दी 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 आ जाए। हाँ, नारद मुनि ने नल कुबेर को, वो तो बदमाश थे, नल कुबेर और मणिग्रीव, जहां गंगा में लोग पवित्र होने जाते हैं वहीं लड़कियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे, जैसे आजकल हरिद्वार से आगे ऋषिकेश में कई नल कुबेर के भाई उधर नाच रहे थे। इसलिए अब गंगा पवित्र कहां से हो, पहले ऊपर से ही अपवित्र होके आ रहे, सारे पापी उधर ही पड़े होते। देखा वो रेफ्टिंग वाले और क्या कहेंगे उसको, और सब उधर ही पड़े होते हैं, ये बड़ा अत्याचार हो रहा है। इसीलिए आतंक ऊपर से हर साल कोई ना कोई बाढ़ आती है ऊपर। ये तो जहां जाना चाहिए भगवान को प्राप्त करने, वहां लोग भोग करने जाते हैं, तो ऐसा ही हाल होगा। हमने तो कहा सबको आजकल सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो चार धाम जाते हैं, कुछ दिन बना रहे थे, तो सर्टिफिकेट मत बना, बोलो चार नेम का पालन करे वो ऊपर जाए। हाँ, नेम पर चार नेम का पालन नहीं करे तो चार धाम में जाने का अधिकार नहीं है, पापी थोड़ी उधर जा सकते। तो ये उदाहरण कौन सा आ रहा है, नित्यानंद शिवानंद सेन और भगवान श्री कृष्ण गोपियों का, ये हमारे समझ से ऊपर का है। हमें तो टोपी नहीं पहनी है तो गोपी कहां से बनेगी। अद्वैत आचार्य चेतन महाप्रभु के सामने डांट खाने के लिए, जो दंड के लिए प्रयास कर रहे अद्वैत आचार्य, ये अद्वैत आचार्य वाला उदाहरण कैसे लग रहा है, जबरदस्ती नाश को, कौन सा दर्शन बोल रहे थे, मायावाद, काय के लिए कि डांटे, आज आपने हमको अपना मान लिया जब डांटा है। इसको सामान्य भाषा में ऐसे, कितने लोग रास्ते पे घूमते हुए सिगरेट पीते हैं, आपको कोई परेशानी होती है, आपका अपना बच्चा कोई पिए तो आपको लगता है कि डांटे उसको ना। इसका मतलब आदमी डांट किसको देता है, जिसको अपना मानता है ना, जिसको अपना मानता है उसी को डांटता है, दूसरे को तो नहीं डांटता है ना। अब एक और दूसरा दृष्टिकोण से इसको देखें। वैसे कोई पाप करता है, कोई चोरी करता है तो पुलिस को उसको दंड देती है। जो पुलिस दंड देती है वो तो दंड होता है, लेकिन वही बच्चा अगर घर में से चोरी करे तो माता पिता उसको पुलिस के हवाले करते हैं क्या? लेकिन स्वयं थप्पड़ मार देते, पुलिस के हवाले नहीं करते। ऐसे जो भक्त होते हैं वो भी थोड़ी बदमाशी करते हैं तो भगवान ही उनको थोड़ा सा थप्पड़ मार देते हैं, यमराज के हवाले नहीं करते। इसकी परिभाषा ये है, यमराज के पास नहीं जाता है भक्त, लेकिन कान पकड़ भगवान कर लेते, उठ बैठ करा देते हैं। पहले स्कूल में जब कोई मास्टर दंड देता था तब क्या कराता था, एक दोनों कानों को ऐसे पकड़ के फिर उठक बैठक। एक मैं देख रहा था, एक मैसेज आया कि आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं जिन बच्चों को थोड़ा सा पढ़ने में कम है उसको रोज ऐसे 20 बार करना चाहिए। मैंने बोला हमारे मास्टर बचपन से करते आ रहे, अब उनको अकल आया है कि ये बहुत बड़ा, ये कान दोनों पकड़ के ऊपर नीचे बैठने से बुद्धि तेज हो जाती है। वो साइकोलॉजिस्ट कह रहा था ऐसी एक्सरसाइज करनी चाहिए जो बच्चे थोड़े कमजोर है पढ़ने में। बोला तो 50 साल पहले मास्टर जी हमको कराया करते थे, ऊपर बैठो, कानून दोनों पकड़ो और ऊपर नीचे बैठो, क्या होता है उसमें। तो भगवान दंड स्वयं देते हैं, ऐसे नहीं देते हैं। जैसे ऐसे एक मान्यता है, कोई ब्रज के अंदर, जो कोई ब्रज के अंदर रहेगा तो वो भगवान के धाम चला जाएगा। ऐसा नहीं कि सभी एक बार में भगवान के धाम चले जाएंगे, कोई बदमाश होगा तो वापस ब्रज में ही पैदा होगा, लेकिन किसी भी जोड़ी में पैदा हो सकता है, लेकिन यमराज के पास नहीं जाएगा, उधर दोबारा होगा, वहां ब्रज में वापस उसका जन्म होगा, भगवान ही उसको दंड देगा। हरे कृष्ण। नहीं समझ में आ रहा? आ रहा समझ में? अब पहले कभी हमने आपको उदाहरण दिया कोई याद है ब्रज के बंदरों का? दो जगह पे ब्रज में बंदर है, एक लोई बाजार में और एक रमन रेती में हमारे मंदिर के पास है। दोनों का काम अलग है, देखा है? लोई बाजार वाले क्या करते हैं, पहले चश्मा छीनते थे, आजकल मोबाइल छीनते, एडवांस हो गए। और उनका पार्टनरशिप है, वहां खड़े हुए लड़के कहते हैं 50 रुपये दो वापस लेके देता हूं, और वो बिस्कुट ऊपर फेंकेगा, वो मोबाइल नीचे फेंकेगा, ये बिजनेस मैन है। तो ये सब जो वहां बिजनेस कर रहे हैं इतनी बेईमानी करते हैं, भगवान कहते हैं ये भक्तों से ऐसे मत करो नहीं तो बंदर बनना पड़ेगा। बन जाएगा, वो बने बने हुए अभी धंधा कर रहे हैं, उधर वापस आए अभी भी धंधा कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, मोबाइल ले रहे, धंधा छोड़ा नहीं है। और हमारे मंदिर की एरिया वाले बंदर जो है केला चुराएंगे, रोटी चुराएंगे, कभी भी मोबाइल चश्मा नहीं चुराएंगे, क्योंकि ये भक्त है जो प्रसाद चोरी करते थे। ये धंधे वाली बेईमानी नहीं करते थे। दोनों का नेचर हमको अजब में लगता है, तो दोनों को दंड दिया लेकिन दोनों का काम अलग है, दोनों एक जैसे नहीं। आप देख लेना जाके कभी भी हमारे, वो रोटी के लिए कहीं से भी आ जाएगा, बाकी ये चश्मे वाले उधर है। आपका फीडबैक चेक रहा, अंदर पैसा होगा तुम्हारे पास, तू गड़बड़ आदमी। कुछ रखा होगा, क्योंकि वो पैसे वाले के बगैर किसी को देखते ही नहीं है। अरे कृष्ण, अरे कृष्ण। तो ये श्लोक का अर्थ हुआ कि भगवान अगर किसी को दंड देता है तो बहुत बड़ी उसकी क्या मानते हैं, मैं महत्वपूर्ण मानता हूं, शब्द महत्वपूर्ण यहां श्री प्रभुपाद ने अंग्रेजी में लिखा है, यू हैव गिवन मी इज मोस्ट एक्साल्टेड, बहुत ही अति कृपा है मानना चाहिए, बड़ी आपने हमारे ऊपर कृपा की। अब श्री प्रभुपाद जी के तात्पर्य का पहला श्लोक, भगवान द्वारा दिया गया दंड भक्त के द्वारा परम कृपा के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान अगर दंड दें तो उसको भगवान की बड़ी कृपा और करुणा माननी चाहिए, भक्त ऐसे मानते हैं। और श्रील प्रभुपाद ने एकदम कौन सा श्लोक उद्धृत किया होगा आपके विचार में? दसम स्कंद भागवत से ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना कर रहे हैं। किसका श्लोक उदात्त किया? दूसरे एक आचार्य का, एक महाजन के श्लोक की पुष्टि के लिए एक संप्रदाय के आचार्य ब्रह्मा जी का श्लोक उद्धृत किया है। ये इसका मतलब सामान्य लोगों की बातें नहीं है भागवत में। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये सुनते हैं। कहां गया भाई? हरे कृष्ण 14:8। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो। इसमें शब्द सुसमीक्षमाणो का मतलब क्या है? बहुत अच्छी बात कही। क्या? इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और इस शब्द के ऊपर प्रभुपाद जी के तात्पर्य में श्रीधर महाराज का टीका क्या है? बच्चे को कुछ नहीं करना है, केवल पिताजी के जीते जी सेवा करता रहे, सारी पिताजी की संपत्ति अपने आप उसके जाते मिल जाएगी। ये समीक्षा महाराज का परिभाषा दिए लिखी है कि इंतजार कर रहा है, करेगा तो सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो वैन जैसे को भी राज मिल गया, फिर बदमाश निकला, उसने भी इंतजार किया तो मिल गया उसको। ऋषियों ने उससे भी अन्याय नहीं किया। तो भगवान की कृपा सबके ऊपर होती है, लेकिन प्रतीक्षा कोई कर पाता है और कोई नहीं कर पाता। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अनुकंपा, भगवान की कृपा का आकांक्षी सदा रहना चाहिए, आशा बनी रहनी चाहिए कि वो दयालु है, कृपालु है, कभी न कभी जरूर कृपा करेंगे। और ऐसे नहीं कहना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा नहीं कर रहे हैं। कब? जब भुंजाम एवात्मकृतम विपाकम। हमारे अपने किए हुए कर्म पक गए हैं, उनका फल भोग रहे हैं, तो कुछ कष्ट दुनिया में आते हैं, तो ऐसे नहीं समझना चाहिए कि भगवान कृपा नहीं कर रहे। उनकी कृपा हमको दिख नहीं रही है, लेकिन उनकी कृपा है। एक उदाहरण कभी देते हैं, आपने सुना है, एक भक्त ने भगवान को कहा कि आप सदा हमारा सहायता करते थे जब मेरा अच्छा समय था, अब बहुत मेरा कठिन समय आ गया है, अब आपने हमसे हाथ निकाल दिया। तो भगवान ने उसको ये मान लो कि एक्शन रीप्ले करके पुराना जीवन दिखाया। तो उसमें दिखाया ये कि रास्ते के ऊपर दो व्यक्तियों के पांव थे, तो उसने बोला हाँ ये तो आपकी कृपा थी, ये तो वो मेरा अच्छा समय है तब आप हमारे साथ साथ चल रहे थे, आगे जाके देखा केवल दो पांव के निशान थे। बोला यही तो मैं कह रहा हूं, अभी जब मेरा मुश्किल समय है तो आप साथ में नहीं है। तन भगवान कहते बेटा तुम देखो ये पांव तुम्हारे है कि मेरे है, ये तुम्हारे पांव नहीं है, तुम चलने के लायक नहीं थे, तुमको मैंने गोद में उठा लिया, ये पांव मेरे हैं। तो ऐसा समझना चाहिए, उस स्थिति में ही भगवान ने हमको छोड़ा नहीं, हम उस वक्त तो किसी काम के नहीं थे, कब के मिट गए होते, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें संभाल के रखा है। तो ये इसका अर्थ है, श्लोक की परिभाषा ये है कि ऐसी परिस्थितियां हमारे कर्मों के कारण कष्ट आते हैं, तभी भी भगवान की कृपा के लिए सदा इंतजार करते रहना चाहिए, उसकी कृपा में कोई कमी नहीं है। इसलिए कहते हैं भगवान की कृपा सदा बरसती है, लेकिन उसको लेने वाला कोई भाग्यशाली होता है। बरसात अपनी मौसम में आती है, लेकिन भगवान की कृपा सदा बरसती रहती है, उसकी कृपा के बरसने में कभी कमी नहीं है, लेकिन उसके लेक बाहर निकल के लेने वाले भाग्यशाली कम होते हैं। प्रयास कितना करना ही पड़ेगा, थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा तब कृपा के छींटे पड़ेंगे, प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा उसको कैच करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए जब कष्ट भी आए अपने कर्मों के कारण, तो उस वक्त क्या करना चाहिए? ब्रह्मा जी तीन बातें बता रहे हैं, ये है भक्ति का सूत्र। क्या करना चाहिए?
हृतवाक वपुभिः विधम् नमस्ते।
वाणी से भगवान का गुणगान करना चाहिए, शरीर से भगवान की सेवा करनी चाहिए, और यहाँ वपु शरीर हो गया, और हृदय से या मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। इन तीन चीजों को भक्ति का सूत्र कहते हैं। ये 11वें अध्याय भगवत गीता का आखिरी श्लोक है, क्या है किसी को याद है? जल्दी बोलो। मत कर्म किन मत परमो भत भक्त संग वर्जित। इसमें तीन पहले तीन चीजें हैं जो करनी चाहिए। मत कर्म, शरीर से काम मेरे लिए करो। मत परमो, मन से मेरे को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। मत भक्त, प्रेम से मेरी सेवा करो, मेरी भक्ति करो। तो प्रेम भी मुझसे करो, हृदय से प्रेम करो, मन से मुझे पाना चाहो, शरीर से मेरे लिए काम करो। ये हुआ भक्ति का सूत्र। ये 11वें अध्याय का आखिरी श्लोक है। इसके ऊपर 12वां अध्याय भक्ति के सूत्र के ऊपर भक्ति की व्याख्या है। और भक्ति का सूत्र श्री वृत्तासुर, वृत्त भक्ति के सूत्र में यही तीनों बात कहते हैं। मैं कब दास अनुदास बनूंगा? अरे भाई, दास अनुदास बन के क्या प्रसाद खाते रहोगे? बोलो नहीं 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 नहीं। मन से स्मरण करूंगा, वाक से कीर्तन करूंगा, और शरीर से सेवा करूंगा। तीन काम करूंगा। भक्तों के सेवा, भक्तों का दास बनने के बाद करना क्या है? तीन चीजें करनी है। क्या शब्द है? मन समरेत वाक गृणित काया करोति। काया से काम करूंगा, वाणी से कीर्तन करूंगा, और मन से स्मरण करूंगा। तो ये जो तीन चीजें, यहां ब्रह्मा जी भी ये तीन चीजों के साथ एक चौथी चीज और जोड़ दी, नमस्ते। आपको नमस्कार करूंगा। वैसे नमस्ते का अर्थ क्या है? नमे अस्ति इति नमस्ते। मेरा कुछ भी नहीं है, सब कुछ आपका है। भगवान को नमस्कार करने का परिभाषा क्या है? एक नमस्कार हाथ जोड़ के होता है, ऐसे मतलब आप आदेश कीजिए मैं क्या करूं। दूसरा नमस्कार है तो गर्दन झुकाना। अब मैं नहीं सोचूंगा, आप जो कहेंगे वो करूंगा, ये थोड़ा एडवांस नमस्कार है। और तीसरा है दंडवत प्रणाम करके, बोले मन से क्या, शरीर से भी मैं नहीं करूंगा, जो कराओगे वो करूंगा। तो ये नमस्ते मतलब मैं अपने आप को समर्पण करना है। वैसे नमस्ते समर्पण है, मैं समर्पण करता हूं, मेरा कुछ भी नहीं। अब तो नमस्ते तो हमने नमस्ते तो ऐसे अभी तो नमस्ते ही छोड़ दिया, हम बाय बाय कर रहे पहले कम से कम राम राम बोलते थे, नमस्ते बोलते थे, वो सब चला गया। और जो ऐसे करेगा, ब्रह्मा जी कहते हैं जो ऐसे करेगा, अपने कर्मों की कठिनाई में भी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ेगा, तो जीवेत मुक्ति, वो तो फिर भगवान के चरणों की कृपा अथवा मुक्ति प्राप्त करने का अधिकारी अपने आप बन जाएगा, उसको कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा अलग। अब दो प्रकार के लोग एकदम हो जाते हैं, एक होते हैं कि भगवान ने हमको कष्ट दिया है, और दूसरे कहते हैं हमारे कर्मों का कष्ट है। और भक्त और भी एक स्टेज आगे बढ़ के कहते हैं हम तो बहुत बड़े पापी अपराधी थे, ये तो भगवान ने थोड़े में जान छोड़ दी, उसकी बड़ी कृपा है, उसने कृपा की है कि हम जैसे पापी अपराधी को भी थोड़े में छोड़ दिया है, ज्यादा दंड नहीं दिया। तो ये भक्त की भावना होती है। और महाजन बलि महाराज कहते हैं जीवन में कठिनाइयां आएंगी, दिक्कतें आएंगी, शरीर की भी परेशानियां आएंगी, उस वक्त भी भगवान की भक्ति से विचलित नहीं होना चाहिए, भगवान की कृपा की प्रतीक्षा करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी सेवा को तत्परता से करते रहना चाहिए, तो निश्चित रूप से समय के ऊपर उनकी कृपा प्राप्त होगी। और श्लोक का अर्थ श्री प्रभुपाद ने कहा, जो आपकी कृपा चाहता है और अपने विगत कर्मों के फल के कारण सभी प्रकार की विषम परिस्थितियों को सहता है, जो तन मन तथा वाणी से सदैव आपकी भक्ति में लगा रहता है और आपको सदैव नमस्कार करता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति का पात्र है। ये श्लोक का अर्थ प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, भक्त जानता है कि भगवान द्वारा दिया गया
तथा कथित दंड अपने भक्त को सुधारने तथा सन्मार्ग पर चलाने का एकमात्र अनुग्रह है। अब उदाहरण आपका अच्छा लगेगा, कौन सा? नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर नारद ने अनुग्रह किया, वहां शब्द लिखा है अनुग्रह, दंड नहीं लिखा है उसको। उस प्रसंग को कहते हैं नारद का गीत। नारद ने जब नल कुबेर और मणिग्रीव को लड़कियों के साथ अलकनंदा में मदरा पी के उदंड देखा तो सोचा कि कहीं मेरे को क्रोध तो नहीं इनके ऊपर आया, क्या मैं इनको शाप तो नहीं दे रहा हूं। तब कहा नहीं, मैं वीणा निकाल के थोड़ा गा के देखता हूं, क्यों क्रोध में गाना नहीं आता है, क्रोध में आदमी गा नहीं सकता है। तो उन्होंने गाया तो गा रहे थे, बोला इसका मतलब क्रोध नहीं है, बोला क्या है? अनुकंपा है, वह शब्द लिखा है अनुकंपा अर्थम, उन दोनों के ऊपर अनुकंपा कर रही तो दंड नहीं क्या? ये शब्द यहां लिखा है कि वो भगवान की तथाकथित दंड अनुकंपा है। अनुकंपा क्या की नल कुबेर और मणिग्रीव के ऊपर? एक तो भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का दर्शन किया और फिर उसके बाद दामोदर अष्टक में क्या कहते हैं, भक्ति भाजाओ कृतोच, और अपनी भक्ति दे दी, प्रेम भक्ति दे दी उनको, और आज वो स्निग्ध कंठ और मधु कंठ होके और दिन में नंद बाबा आदि को और रात में गोपियों को कृष्ण कथा सुना रहे हैं दोनों। कितना बड़ा स्तर उनको मिल गया नारद के इस तथाकथित दंड का। दिख रहा था दंड है, पेड़ बन जाओ, लेकिन उनका पेड़ बनना भी अपने गोपाल चंपू भी, गोपाल चंपू के दो मुख्य पात्र बन गए है ना, गोपाल चंपू में किसमें, स्निग्ध कंठ और मधु कंठ जो गाते हैं कृष्ण लीला, गोपाल चंपू है ना, हाँ गोपाल चंपू में स्निग्ध कंठ और मधु कंठ ये दोनों नल कुबेर और मणिगिरी में। कितना बड़ा स्तर उनको मिला। तो भगवान या भगवान के, वैसे नारद को भी भगवान का अवतार ही माना जाता है और अवतार ही है भगवान का, इनका दंड देखने में दंड लगता है लेकिन होता है अनुग्रह। अनुग्रह का अर्थ क्या होता है? अनुग्रह, अनुग्रहामी, हमारे ऊपर अनुग्रह करो। अनुग्रह का अर्थ क्या करेंगे, शब्द अर्थ क्या करेंगे अनुग्रह का? जब शब्द अनु आएगा इसका मतलब छोटा है, कोई बड़ा होना चाहिए आगे ना, अनुगामी जैसे होता है, कोई बड़ा है उसके पीछे चलना चाहिए। तो अनुग्रह किसके ऊपर होता है? जो जो अपने आप को समर्पण करता है, जो ऐसे दंड को आशीर्वाद मानता है उनके ऊपर अनुग्रह होता है। अनुग्रह दामोदर अष्टक में अनुग्रह शब्द कैसे है गाइए, अनुग्रह शब्द उधर है, दामोदर अष्टक का छठा श्लोक अनुग्रह शब्द है, देखो ढूंढिए, कार्तिक आने में थोड़ा दिन है बाकी। वो तो यहां दामोदर इस ब्रज में मेरे को ये भक्ति चाहिए अनुग्रह, वो शब्द ऐसा है कि अनु उधर लिखा है, ग्रहणे ग्रहणे दूसरी लाइन में क्या है, कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानो, फिर ग्रह जो है इधर, ग्रह इधर है ना, वो ग्रह अनु के साथ लगेगा अनुग्रह, वो अनु उधर है और ग्रह इधर है। वैसे क्या है कि हमको लगा होता है ग्रह, हम अनु बनते नहीं है इसलिए ग्रह लगता है, अनु बनेंगे तो अनुग्रह होगा नहीं तो ग्रह ही लगेगा, तो ये नव ग्रह उसको लगते जो अनु नहीं बनता है। अनु मतलब अनुगामी, जैसे हम रूपा अनुगामी है, रूपा अनुगा है, जो अनु नहीं, जो अनु बनेगा उसके ऊपर अनुग्रह और जो ननु बनेगा उसके ऊपर नवग्रह। ननु वाले के ननु मतलब नहीं मानेगा उसके ऊपर नवग्रह, और जो जो मानेगा उसके ऊपर अनुग्रह। तो अनुग्रह की परिभाषा ये है, ठीक है। अनुग्रह ग्रह, वैसे तो संसार के अंदर सबसे बड़ा ग्रह तो घर है जिसके अंदर रहते हैं, उसको ग्रह ही बोलते हैं, उसको ग्रह बोलते हैं भैया। ग्रह उसका ग्रह है और उसके अंदर हमेशा क्या होता है, दुराग्रह होता है, आग्रह होता है, सब झगड़ा ही होता है सारा दिन, दुराग्रह आग्रह सारे ग्रह उधर होते हैं। इसलिए अनु बन जाओ तो अनुग्रह हो जाएगा, नहीं तो ग्रह। तो उसको अनुग्रह मानते हैं। अतएव भगवान द्वारा दिए गए दंड की तुलना अपने पिता माता भाई तथा मित्र द्वारा दिए गए बड़े से बड़े पुरस्कार से भी नहीं किया जा सकता। अब ये कहते हैं कि ये हमारे को कभी कोई बड़े से बड़ा पुरस्कार दे तो भी उसकी तुलना भगवान के दंड से नहीं की जा सकती। यानी भगवान के द्वारा दिया गया दंड दुनिया के बड़े से बड़े पुरस्कार से भी महान है, ये परिभाषा है। इसके बाद श्लोक दूसरा आ गया और श्लोक ऐसे आ गया पता ही नहीं लगा या कथा पूरी हो रही है और वहां टाइम पूरा हो रहा है। तो अब हमको आज इस श्लोक से शिक्षा क्या लेनी है, यह कथा को पूरा करते हैं। किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो एक आधा पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो कल वाला जो आए उससे पूछ लेना। तो आज की शिक्षा क्या है, अपने कर्मों के कारण हम इस जन्म, हमको ये जन्म मिला है, उसके साथ कुछ ना कुछ तो पीड़ा तकलीफ दुख आएगा और उस दुख के आने के समय भी भगवान की कृपा को, कृपा का इंतजार करते रहना चाहिए और भक्ति को जारी रखना चाहिए। और अगर ऐसे समझते हैं कि हमारी कोई गलती अभी नहीं है फिर भी दंड मिला है तो समझ लें भगवान ने कृपा की है, अनुग्रह किया है शायद हमको सुधारने के लिए। ये दूसरी लाइन है ना, इसमें लिखा है भगवान कभी कभी अपने भक्तों को सुधारने के लिए, सदमार्ग के ऊपर चलाने के लिए ऐसे दंड देते हैं। हो सकता था हमारा अहंकार हमको कुमार्ग पे ले जाता, भगवान के हमने सतमार्ग के चलाने के लिए ऐसी परिस्थितियां खड़ी की है ताकि हम किसी गलत रास्ते में न जाए। तो हर हाल में भगवान के अनुग्रह का आकांक्षी रहना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न है जिज्ञासा है, पुंशाम श्लाघ्यतम मन्ये दंडम अर अहरतम अर्पितम यन्न माता पिता भ्रात सर्जस आदि शांति। बहुत सुंदर श्लोक, हरे कृष्णा। कोई किसी का, हाँ प्रभु जी। प्रश्न ये है रुक्मणी कृष्ण प्रभु का कि ये इस, जैसे आपके इस शब्दों को लेके मैं सिर्फ पहले कहूं कि जो नया भक्त बनता है ना उसको भगवत गीता का पहले सबसे श्लोक याद पता है कौन सा होता है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज, और पूरे जन्म में वो कभी उसके ऊपर चल नहीं सकता। जो पहला श्लोक याद होता है जब हम नए भक्त बनते, सर्वधर्मान परित्यज याद होता है और जिंदगी भर उसके ऊपर चल नहीं सकते। ये हमारी समस्या है। तो ये हमारे आचार्य ब्रह्मा जी ने कहा है कि ऐसी स्थिति में भगवान की कृपा का आकांक्षी रहना चाहिए। ये कहना आसान है, इसको जीवन में अपनाना बहुत आसान नहीं है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, वैसे इन सब चीजों को समझने के लिए जो एक उत्तर है वो ऐसे व्यक्तियों का संग करना चाहिए जो ऐसी स्थिति को अच्छा स्वीकार करते हैं, और ऐसे मिल जाएंगे आपको। एक महात्मा हम जानते हैं, उसको हार्ट अटैक हुआ, सब लोग देखने आए तो कहता है अरे आपको बहुत बड़ी तकलीफ हुई, बोला भगवान ने कोई मेरे को कम चाहा है का, पहले रोज काम करना पड़ता था, अब चार पाई पे सोया हूं, चार आदमी सेवा कर रहे हैं, कितना बड़ा दयालु है। उसकी बात जो जवाब था, उत्तर था, ऐसा था कि ये जो तकलीफ आई है इसमें देखो भगवान ने चारपाई की सुला दिया है, कुछ काम करना नहीं, कहीं जाना नहीं, चार आदमी सेवा कर रहे हैं, तो भगवान ने कृपा ही की है ना। तो इसको आधुनिक भाषा में कहता है हर चीज को पॉजिटिव देखना, कि इसमें भगवान की भलाई का कोई ना कोई हाथ होगा जो हमको अब नहीं दिख रहा है, और प्रतीक्षा करनी चाहिए कि ये रास्ता, ये अपने आप एक रास्ता बंद हुआ है तो 10 और खुलेंगे, हमको अभी दिख नहीं रहे। लेकिन प्रैक्टिकली इसको करने के लिए जब तक इस परिस्थिति में आदमी पड़ता नहीं है तब तक पता नहीं लगता, जब स्वयं इस स्थिति में पड़ता है तभी इस बात का पता लगता है। और ऐसी स्थिति में प्रभुपाद की जीवनी में सब कुछ होते हुए वो सफर ड्राइवर वाली कार 1922 में इतना और सब कुछ चला जाए और फिर भी भगवान की कृपा माने, और ये श्लोक उस वक्त प्रभुपाद को अर्थ उसी वक्त इस श्लोक का प्रभुपाद को समझ में आया कि भगवान जब किसी को अपना मानता है तो उसका सब कुछ हर लेता है। ये प्रभुपाद को उस श्लोक का अर्थ तब समझ में आया जब ये सब कुछ हुआ, और उसके बाद भी उन्होंने कहा ये उनकी कृपा है तो उनकी सेवा को नहीं छोड़ा तो फिर भगवान ने कैसे सब कुछ कर दिया। तो उस स्थिति में जो सब्र करता है, फिर ये श्लोक का अर्थ जो श्रीधर स्वामी का प्रभुपाद ने दिया है, केवल प्रतीक्षा करनी है तो फिर पिताजी की धन दौलत अपने आप मिल जाएगी। फिर प्रभुपाद को भगवान ने क्या पूरी दुनिया का साम्राज्य दे दिया, एक छोटी सी दवाई की फैक्ट्री लेके पूरी दुनिया का साम्राज्य दे दिया। तो ये इंतजार में नुकसान नहीं है, लेकिन इंतजार थोड़ी देर के लिए भारी पड़ता है, उस वक्त भगवान का भजन नहीं छूटे ये बड़ी बात है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, दृढ़ संकल्प करना चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो, प्रहलाद महाराज की तरह चाहे अपना बाप भी तकलीफ देने वाला हो, मैं भगवान का भजन नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, एक दृढ़ संकल्प हो। और ये हमने भगवान से वायदा किया है माता के गर्भ में कि हम आपका स्मरण करेंगे, और हमको भूल गया था, ये तो कृपा से संतों भक्तों की प्रभुपाद की हमको ये मिल गया है वापस हरे कृष्ण महामंत्र, अब हम किसी भी परिस्थिति में इसको नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हमको इसको नहीं छोड़ना, एक ये दृढ़ संकल्प, ये हम कहेंगे हम भगवान का नाम जपना नहीं छोड़ेंगे, भगवान हमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कैसे भी लड़कते रहे लेकिन कहीं वो उठा लेगा वहां से, ये विश्वास होना चाहिए। ये दृढ़ विश्वास कब आता है असल में, जब कुछ जीवन में ऐसे अनुभव होते हैं तब विश्वास आता है, थ्योरिटिकली नहीं आता है, कहने से नहीं आता है, जब इन परिस्थिति से गुजरते हैं तब आता है, और भगवान का हाथ दिखता है। और सब भक्तों को इसका थोड़ा थोड़ा जीवन में अनुभव भगवान कराता है, इसलिए भक्ति में टिके हुए, नहीं तो कब के चले गए होते। सबको अनुभव कराता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, सबको अनुभव होता है, कहीं ना कहीं भगवान का अनुभव होता है, लेकिन कहीं हम बर्दाश्त इंतजार नहीं कर पाते, हमारी समस्या है कि हम थोड़ा इंतजार नहीं कर पाते हैं इसलिए फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इंतजार करने वाले को तो मीठा फल मिलना ही है, इंतजार का फल मीठा है पहले, तो भगवान को कभी कभी अच्छा लगता है। तो कभी कभी ऐसे जाके वो रोते हुए कहना चाहिए कि ऐसे तुम्हारे होने के बाद भी ये संकट हमको सहने पड़ेंगे, तो चलो हम तो सह लेते हैं लेकिन नाम तुम्हारा बदनाम होगा। ये ऊपर के स्तर की बात है, ऐसे कह सकते हैं, कुछ भक्त ऐसे उस स्तर के होते हैं तो कह सकते हैं, लेकिन हमको तो हाथ जोड़ के कहना चाहिए जैसे आप करो हम आपके हैं। तब राधा रानी का भाव आश्ली क्षमा पाद प्राण पुनस्तुमा मर्मताम करो यथा तथा वाविदा को लंपटो मत प्राण नाथस्तु, ये भाव सदा बना रहना चाहिए। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की। ग्रंथराज श्रीमद भागवत महापुराण।